ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम छठा स्कंध तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 28। तन यही श्लोक है बोर्ड में, नायद्वम असतो मुखान मुकुंदा पदारविंदा मकरंदा रासर अजस्वम निष्किंचने परमहंस कूले संगे जुस्ता गृह निराया वर्तमने बाधा कृष्णम तन्नन्याद्वाम असतो विमुखं मुकुन्दा पदारविन्दा मकरन्दा सदजस्वम् निष्किञ्चने परमहंसा कुलेरसङ्गे युस्ताद्गृहे निराया वर्तमानि बद्धतृष्णम् तन्ननयद्वम् असतो विमुखं मुकुन्दा पदारविन्दा मकरन्दा रसदजस्वम् निष्किञ्चने परमहंसा कुलेरसङ्गे युस्ताद्गृहे निराया वर्तमानि बद्धतृष्णम् माता जी शब्द
तान उनको आनयध्वम मेरे सामने लाओ असतः अभक्त जिन्होंने कृष्ण भावनामृत नहीं स्वीकार किया विमुखान जो विमुख हैं मुकुंद मधु के पाद अरविंद चरण कमलों के मकरंद मधु से रसात स्वाद से अजस्रम निरंतर निष्किचे चयन भौतिक आसक्ति से पूर्णतया मुक्त पुरुषों द्वारा परमहंस कुलय है परम सम्मानित व्यक्ति परमहंसों द्वारा असंगय है भौतिक आसक्ति से रहित जुष्टात जो भोगा जाता है भोग्य गृहे गृहस्थ जीवन में निरय वर्तमनी नरक ले जाने का रास्ता बद्ध तृष्णान जिनकी इच्छाएं बद्ध हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। परमहंस सम्माननीय व्यक्ति हैं जिन्हें भौतिक भोग में कोई स्वाद नहीं आता तथा जो भगवान के चरण कमलों का मधुपान करते हैं। मेरे सेवकों मेरे पास ऐसे व्यक्तियों को ही दंडित किए जाने के लिए लाओ जो उस मधु के आस्वादन से विमुख हैं, जो परमहंसों की संगति नहीं करते तथा जो गृहस्थ जीवन एवं सांसारिक भोग में लिप्त हैं, क्योंकि ये नरक ले जाने वाले रास्ते हैं। तात्पर्य, यमदूतों को यह चेतावनी देने के बाद कि वे भक्तों के पास नहीं जाएं, अब यमराज यह बताते हैं कि किन लोगों को उनके समक्ष लाया जाए। वे यमदूतों को विशेष रूप से सलाह देते हैं कि वे ऐसे भौतिकवादी व्यक्तियों को लाएं जो मात्र संभोग के लिए गृहस्थ जीवन में लिप्त रहते हैं। श्रीमद भागवत में कहा गया है, यन मैथुना दी गृहमेधि सुखम हितुच्छम। लोग केवल संभोग के लिए गृहस्थ जीवन में लिप्त रहते हैं, वे अपने भौतिक कार्यकलापों द्वारा अनेक प्रकार से सताए जाते हैं और उनका एकमात्र सुख सारे दिन कठिन श्रम करने, रात में सोने तथा संभोग करने में निहित रहता है। निद्रया रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः। भौतिकतावादी गृहस्थ रात में या तो सोते हैं या संभोग में रत रहते हैं। दिवाचार्थे हया राजन कुटुंबभरणेन वा। दिन के समय वे धन की खोज में रहते हैं और यदि धन मिल गया तो उसे अपने परिवारों के भरण पोषण में खर्च करते हैं। यमराज अपने सेवकों को विशेष रूप से सलाह देते हैं, वे उन भक्तों को नहीं लाएं जो सदैव भगवान के चरण कमलों का मधुपान करते रहते हैं, जो समदर्शी हैं और सारे जीवों पर सहानुभूति के कारण कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। भक्तगण यमराज द्वारा दंडनीय नहीं है, किंतु जिन लोगों को कृष्ण भावनामृत की कोई सूचना नहीं रहती, उन्हें उनके तथाकथित पारिवारिक भोग के भौतिक जीवन से नहीं बचाया जा सकता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, देहापत्य कलत्रादिश्वात्म सैन्येश्व सत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। आत्मतृप्ति के लिए ऐसे लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि उनके राष्ट्र, समुदाय या परिवार उन्हें बचा लेंगे। वे इस बात से अचेत रहते हैं कि ऐसी गलती करने वाले सैनिकों को कालक्रम में विनष्ट कर दिया जाएगा। निष्कर्षतः मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों की संगति करे जो 24 घंटे भक्ति में लगे रहते हैं।
ओम ज्ञानति मेन्द्रस्य ज्ञानञ्जनाशलक्या चक्षुर्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोमृतं सर्वतामेन भूतले स्वयं रूपा कदाम। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णव श्रीरूपां सगजतां सहगनारगुणा साद्वैतं सारूपं वैजनासहितं कृष्णजय श्रीरापदा सहगनारगुणा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता ताप्ता कांचना घोड़ा विषभान वंचा का पात्र जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण तन्यनाद्वम असतो विमुखन मुकुंद उदारविंद मकरंद रसद अजस्वम निष्किंचने परमहंस कुलेर असंगेर विसागे निराय वर्तमानि बद्ध तृष्णम। तो इस श्लोक का उच्चारण यमराज जी कर रहे हैं और जैसे कि आपने पिछले श्लोकों में पढ़ा यामदूतों ने उनके स्वामी यामराज से एक प्रश्न पूछा था। यामदूत जो थे आश्चर्य हो गए थे कि जब वो गए अजमिल की आत्मा को नरक में लाने के लिए, सजा भुगतने के लिए, उन्हें रोक दिया गया। किसके द्वारा? मिशन दूतों के द्वारा। तो पहली बार ऐसी घटना बीती थी जबकि उनके स्वामी ने भेजा किसी कार्य को निभाने के लिए और किसी और ने रोक दिया। तो यामदूतों के मन में शक हुआ, शायद यामरा से ऊपर भी कोई शक्ति है, नहीं तो क्या हिम्मत है कोई रोके हमारे कार्य को। तो यामदूत ने पूछा यामराज जी से, आपसे ऊपर भी कोई शक्ति है? और यामराज ने स्वीकार किया है। तो आगे के श्लोकों में यामराज जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं उनको मेरे पास नहीं लाओ। क्यों? क्योंकि जो भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं वो पाप के कार्यों से बचते हैं। जो भगवान के नामों का शुद्ध उच्चारण करते हैं उनका हृदय शुद्ध बन जाता है, चेत दर्पण मार्जनम, इसलिए वो पाप के काम में नहीं जुड़ते। और अगर जुड़े भी गलती से तो भगवान को माफ कर देते हैं क्योंकि वो भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। तो यामराज जी ने स्पष्ट कहा यामदूतों को, उन व्यक्तियों के पास मत जाओ जो कि मेरे नाम भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं। तो आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं यामराज जी? आज के श्लोक में कह रहे हैं जो परमहंस हैं उनकी कोई इच्छा नहीं रहती भौतिक कार्यों में जुड़ने के लिए। दूसरे शब्दों में परमहंस, आजकल आप देखते हो हर धर्म प्रचारक अपने आप को परमहंस महात्मा बुलाता है, पर यहां परमहंस का वर्णन दिया जा रहा है। परमहंस का एक गुण यह है कि किसी प्रकार की भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कार्य में उसकी कोई रुचि नहीं, जीरो, कोई रुचि नहीं। ये नहीं कि हमारे गुरु तो परमहंस हैं तो जो भी करेंगे वो उनकी लीला है। जैसे कई धर्म प्रचारक क्या कहते हैं, हमारे गुरु जी तो परमहंस हैं, वो जो स्त्रियों के साथ नाचते भी हैं उनकी लीला है, वो आप लोग समझ नहीं सकते। पर परमहंस का अर्थ है जो तन मन धन से जुड़ा हुआ है भगवान की सेवा में। यामराज जी यहां कह रहे हैं जिसकी बिल्कुल रुचि नहीं किसी प्रकार के भौतिक कार्य में जुड़ने के लिए। उनकी रुचि किस में है? किसी न किसी विषय में तो रुचि चाहिए। अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं जुड़ना चाहते तो भौतिक क्षेत्र में जुड़ना पड़ेगा। अगर मन के द्वारा भगवान के शुद्ध उपदेश का स्मरण नहीं करना चाहते तो मन द्वारा भौतिक विषयों का स्मरण होगा। किसी न किसी रूप से आपने अपने शरीर का उपयोग तो करना है। जो भक्त है उनका भाव यह रहता है ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम। ये ऋषिकेश, भगवान के अनेक नाम हैं जिनमें एक नाम है ऋषिकेश जिसका अर्थ है इंद्रियों के स्वामी। तो भक्तों का भाव यह है कि मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग किया जाए सदा निरंतर भगवान की सेवा में। तो जो परमहंस हैं उनकी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कार्य में जीरो, कोई रुचि नहीं। वो सदा भगवान के चरण कमलों का मिठास अनुभव करते रहते हैं। तो भक्ति में जुड़ने का ये अर्थ नहीं कि मिठास, असली मिठास नहीं प्राप्त होगा। भक्ति में जुड़ने का अर्थ है आप असली मिठास को महसूस कर रहे हो। प्रहलाद महाराज कहते हैं न तो विदम स्वर्त गति में विष्णु। लोग ये नहीं जानते कि असली सुख शांति कैसे प्राप्त होगा। तो जो व्यक्ति भौतिक कार्य में जुड़ते हैं और तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो भौतिकवादी हैं वो दिन रात मैथुनिया और इंद्र तृत्व के कार्यों में जुड़े रहते हैं। तो जो भौतिक कार्यों में जुड़े हैं वो अज्ञानता में हैं, वो सोचते हैं कि इन इंद्र तृत्व के कार्यों के द्वारा सुख शांति प्राप्त होगी। पर जो परमहंस हैं वो जानते हैं कि अगर हमें असली सुख शांति चाहिए तो एक ही उपाय है, क्या है? भगवान के चरण कमलों का शरण लेना। उसका अर्थ है भगवान की शिक्षा का पालन करना। तो यहां यमराज जी कह रहे हैं जो परमहंस हैं उनकी एक तो इंद्रिय तृप्ति में कोई रुचि नहीं रहती, दूसरा वो सदा भगवान के सेवा में जुड़े रहते हैं, जिसका ये परिणाम रहता है वो सदा आनंद ही आनंद अनुभव कर रहे हैं। तो आगे यमराज जी कहते हैं, हे मेरे प्रिय मित्र, हे मेरे प्रिय सेवक, तुम उन व्यक्ति को लाओ मेरे पास अंजाम भोगने के लिए जो बिल्कुल जिनकी कोई रुचि नहीं है भगवान के चरण कमलों के सेवा में जुड़ने के लिए, और जो कि भक्तों की संगत खास करके परमहंस की संगत में नहीं रहना चाहते। तो दूसरे शब्दों में यमराज जी स्पष्ट कह रहे हैं कि उन व्यक्तियों को सजा प्राप्त होगी जो कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में जुड़े हैं। हम जब भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में जुड़ते हैं तो हमें कुछ अंदाजा नहीं रहता इसका क्या परिणाम होगा, क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा। अगर आप जानना चाहते हो किस प्रकार का परिणाम होगा जब आप इंद्रिय तृप्ति के कार्य में जुड़ोगे तो आपको भागवतम का 5वां स्कंध पढ़ना चाहिए, जिसमें अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन है। वहां स्पष्ट कहा गया है ये दोष ये अपराध करोगे ये सजा भुगतनी पड़ेगी, ये मैथुनिया करोगे भेदभाव बिना इंद्रिय तृप्ति में जुड़ोगे तो ये परिणाम होगा। जैसे कि आजकल चस्का है घूमो स्त्रियों के साथ पुरुषों के साथ, तो इनका क्या परिणाम होगा? मृत्यु के बाद आपको ऐसे लोक में जाना पड़ता है जहां पुरुष को एक नंगी स्त्री का रूप को गले लगाना पड़ता है, पर वो जो रूप है जल रहा होता है लोहे जैसा, तो जी उसको एक पल भी छूना कठिन है, पर जबरदस्ती उसे गले लगाना पड़ता है। आप हिटना भी हटना भी चाहो तो नहीं हट सकते। यह है परिणाम जब भोग भेद शास्त्र के नियमों के विरोध आप भोग विलास में जुड़ते हो, आप मंत्री बन जाते हो, चापलूसी करके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाते हो राजा बन जाते हो, पर आप लोगों को धार्मिक शिक्षा नहीं देते तो क्या परिणाम होगा? मृत्यु के बाद उस लोक में जाओगे जहां की आपको पीसा जाएगा जैसे गन्ने को पीसते हैं, और वो दर्द से आप बेहोश हो जाओगे। तो आजकल तो आप देखते हो लोग कहते हैं धन कमाओ, इलेक्शन के वक्त लोग शराब देते हैं लोगों को फ्री, और पैसों का बंडल देते हैं वोट लेने के लिए, पर आप जब धार्मिक शिक्षा नहीं दो प्रजा को और ये पद प्राप्त कर लो तो क्या परिणाम होगा? तो इस प्रकार शास्त्र में स्पष्ट ज्ञान दिया गया है कि इस प्रकार के अपराध का क्या परिणाम होता है। तो यमराज जी कह रहे हैं मेरे पास लाओ वो व्यक्ति जो कि मेरी भक्ति में नहीं जुड़ना चाहता, जो कि परमहंस की संग से भी दूर भागता है। परमहंस और संत महात्मा हर एक को निमंत्रण दे रहे हैं, आइए संगत लीजिए, भगवान की शिक्षा का पालन कीजिए। पर जो घेरे भौतिकवादी हैं वो क्या परमहंस की संगत चाहते हैं? नहीं नहीं, अगर कोई मंदिर से फोन भी करेगा तो नौकर को कह देंगे बोल दो घर में नहीं है साहब, क्योंकि उन्हें डर लगता है साधुओं को मिलने से। डर क्यों लगता है? एक डर लगता है साधु जी उपदेश देंगे जो हम स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है, दूसरा चंदा मांगेंगे तो हमारा चंदा कम हो जाएगा तो वहीं इंद्रिय तृप्ति कम हो जाएगी, तो कोई ना कोई बहाना दे देते हैं कि नहीं, कह दो साहब घर में ही नहीं है। तो यामना जी कहते हैं उन व्यक्तियों को लाओ मेरे पास जो कि भगवान की भक्ति में कुछ रुचि नहीं रख रहे, जो कि परमहंस की संगत नहीं चाहते। शास्त्र में कहा गया है साधु संगत सर्वशास्त्र काया लाभ मात्र साधु संगत सर्व सिद्धि हाया। हमें भक्तों की संगत में रहना चाहिए, भक्तों की संगत के लिए हमें तरसना चाहिए, और भक्तों की संगत में रहोगे तो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकोगे। चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद रॉय से अनेक प्रश्न पूछे जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे। अनेक प्रश्नों में एक प्रश्न ये था, भक्त के लिए सबसे गंभीर स्थिति कौन सी है? और रामानंद रॉय ने कहा अभक्तों की संगत से जुदा हो जाना, यह है सबसे गंभीर स्थिति। तो अभक्तों की संगत, भक्तों की संगत से जुदा हो जाना भक्त के लिए अत्यंत कष्ट की स्थिति है। इसलिए हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम सदा भक्तों की संगत में रहें। और आगे क्या कह रहे हैं यामराज जी, ये जो इंद्रिय तृप्ति का मार्ग है ये नरक का मार्ग है। अगर हम नरक में पहुंचने, जैसे भगवान कहते हैं लस्ट एंगर ग्रीड, ये तीन क्या हैं? नरक के रास्ते हैं। तो जब आप इंद्रिय तृप्ति के कार्य में जुड़ोगे, ये इंद्रिय तृप्ति के कार्य क्या हैं? नरक के मार्ग है। जैसे आपने इधर से चर्च गेट जाना हो, आपको पता ये हाईवे में जाओ तो आप रास्ते में वहां पहुंच जाओगे। तो जब आप इंद्रिय तृप्ति के कार्य में जुड़ते हो तो बिना शंका के ये मार्ग आपको कहां पहुंचाएगा? नरक में, नरक में पहुंचाएगा। तो यामराज जी कह रहे हैं वैसे व्यक्ति को लाओ मेरे पास सजा भुगतने के लिए। तो एक एक तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ भी कार्य हम करें उसका कुछ परिणाम भुगतना नहीं पड़ेगा। जब आप शास्त्र के विपरीत कार्य करते हो तो उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। तो अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, बहुत की यामराज जी कह रहे हैं उन भौतिकवादियों की व्यक्ति के लिए लाओ मेरे पास जिनकी केवल इंद्रिय तृप्ति और मैथुनिया भोग विलास इत्यादि में रुचि है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं तात्पर्य में जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं उनके मन में सदा एक ही भाव रहता है। क्या है वो भाव? इंद्रिय तृप्ति का भाव। और ये जो इंद्रिय तृप्ति का भाव है उसका क्या परिणाम होगा? आप पहुंचोगे नरक की ओर। भक्तों की संगत में रहोगे तो हमें सदा शुद्ध संदेश प्राप्त होगा, और भक्तों की संगत में रहने का हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। कई बार जब हम भक्तों की संगत में होते हैं हम इसकी वैल्यू नहीं समझते, हम सोचते अरे इसमें क्या खास है। भक्तों की संगत में रहना स्वर्ग में रहने के समान है। जैसे हरे कृष्ण लैंड, प्रभुपाद जी ने क्या कहा, पृथ्वी पर स्वर्ग है। जब हम मंदिरों में रहते हैं, मंदिर में आते हैं, ये मंदिर क्या है, वैकुंठ धाम है इस भौतिक पृथ्वी पर। तो भक्तों की संगत में रहकर उत्साह बढ़ता है भक्ति का, और अभक्तों की संगत में रहकर भौतिक आकर्षण बढ़ता है। तो अगर हम इंद्र तृप्ति के कार्य में जुड़े रहेंगे तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए उसका परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। कारण मना देव नेत्र नाथ जंतु देहो पपत है। कई देवता देवियां लाखों हमारे हर कार्य का साक्षी बनते हैं। तो इसलिए यमुना जी कह रहे हैं, मेरे पास वही व्यक्ति लाओ जो कि क्या करते हैं, इंद्र तृप्ति के कार्य में जुड़ते हैं। तो हम सबको हरि नाम को अपनाना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम हरि नाम को अपनाएंगे तो बिना शंका के यमराज का कोई हक नहीं होगा हमारे पास। हरि नाम यमराज जी ने पिछले श्लोक में कहा है कि जो हरि नाम को अपनाते हैं वो पाप के काम से दूर रहते हैं। तो हरि नाम को अपनाना लाभदारी है, तो हरि नाम को अपनाकर हमें 10 नाम अपराधों से बचना चाहिए, हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए कहा कि भक्ति का सुंदर बगीचा नष्ट हो जाता है अगर आप अंदर क्या छोड़ोगे, एक पागल हाथी को। उसी प्रकार हरि नाम का जो लाभ है ये मिट जाता है, घट जाता है अगर आप क्या करो, वैष्णव अपराध। इसलिए हमें आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही सावधान रहना चाहिए कि हम अपराधों से बचें। तो यमुना जी कह रहे हैं इस आजम की कथा में हरि नाम की महिमा का गुणगान हो रहा है। हरि नाम इस कथा में आप देखते हो किस प्रकार आजमिल की सुरक्षा हुई, किस कारण, या हरि नाम के कारण। तो उसी प्रकार हरि नाम तो हम सबको मिला है, पर हमें ध्यान से चलना चाहिए इस भावना से कि हम इन अपराधों से बचें। अपराध रहित हरि नाम का उच्चारण करोगे तो क्या परिणाम होगा, हृदय में भगवत प्रेम बढ़ेगा, हृदय में उत्साह बढ़ेगा और भौतिक कार्यों के प्रति आकर्षण घटेगा। तो हमें बड़े ध्यान से हरि नाम करना चाहिए और अपराधों से बचना चाहिए। आज जैसे आप जानते हो मिसमस में भी है ना, तो संक्षेप में भीष्मी है, संक्षेप में भीष्मा जी के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। खास करके भीष्मदेव जी ने 9 महत्वपूर्ण नियमों का उपदेश दिया था जो मैं चाहता हूं कि आप सब सुनो और अपनाओ। आज के दिन भीष्मदेव जी प्रकट हुए थे। जैसे आप जानते हो भीष्मदेव जी महाजन हैं, स्वयंभू नरादा शंभु कौमारा कपिलो मनु प्रदो जन को भीष्मो बलीर भाई यशकिर व्याम। यामन जी ने कहा है 12 महाजन हैं। भीष्मदेव का एक और नाम था देवव्रता, और उनके पिता का नाम था शंतानु। शंतानु के 8 बेटे थे जिनमें 8वां बेटा था भीष्मदेव, जिनका नाम था देवव्रता, एक और नाम था देवव्रता। और महाराज शंतानु ने ये निर्णय किया था कि उनके बाद देवव्रत राजा बनेगा। महाराज शंतानु आकर्षित हो गए एक औरत के प्रति जिनका नाम था सत्यवती, और सत्यवती एक साधारण घराने की लड़की थी। उनका पिता मछली पकड़ता था, फिशरमैन, क्या बोलते हैं हिंदी में फिशरमैन, पछवारा। उसका पिता पछवारा था, मछुआरा तो मछुआरा था तो उसके पिता की जो बेटी थी सत्यवती बहुत ही खूबसूरत थी। महाराज संतानु सत्यवती के प्रति आकर्षित हुए और उन्होंने सूचना दी कि वो उनसे विवाह करना चाहते हैं। सत्यवती के पिता ने कहा, नहीं, मैं मेरी बेटी को शादी नहीं करने दूंगा तुम्हारे साथ। मुझे पहले ये वचन चाहिए कि मेरी बेटी का जो बेटा होगा वो राजगद्दी पर बैठेगा। और देवव्रत नहीं, भीष्म देव नहीं। पिता ने कहा, ये तो असंभव है मेरे लिए। मैंने देवव्रत को वचन दिया है कि राजगद्दी में वो बैठेगा, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। और पिता उदास होकर अपने महल में लौट आए। भीष्म देव ने देखा पिता बड़ा उदास है, दुखी है, तो उन्होंने मंत्रियों से पूछा, क्या है कारण पिता का इतना उदास और दुखी होने का? मंत्रियों ने कहा कि पिता की इच्छा थी सत्यवती को पत्नी के रूप में स्वीकार करे, पर उसके पिता ने कहा, केवल एक शर्त पर मेरी बेटी तुम्हारे से विवाह करेगी, अगर उसका बेटा राजगद्दी में बैठेगा, जो कि देव भीष्म देव, जो कि महाराज संतानु ने कहा, मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने देवव्रतक मेरे बेटे को ये जिम्मेदारी सौंपी हुई है। तो भीष्म देव ने कहा, नो प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम, समस्या नहीं, मैं ये वचन देता हूं कि सत्यवती का बेटा राजगद्दी में बैठेगा। पिता ने कहा, ये तो तुम कहते हो पर भविष्य में झगड़ा हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों में और सत्यवती के बच्चों में कौन बैठेगा राजगद्दी में? आज तो तुम ये कह रहे हो, तो क्या यकीन कल ये होगा कि नहीं, और सत्यवती के बेटों में और तुम्हारे बेटों में झगड़ा हो सकता है? तो भीष्म देव ने कहा, मैं ये वचन देता हूं कि मैं कभी भी जिंदगी में विवाह नहीं करूंगा। और जब सत्यवती के पिता ने ये सुना कि भीष्म देव ने ये वचन दिया है कि मैं कभी भविष्य में विवाह नहीं करूंगा, फिर वो संतुष्ट हो गए। फिर उन्हें विश्वास हुआ, हाँ, मेरी बेटी का बेटा राजगद्दी में बैठेगा। फिर भीष्म देव सत्यवती को लेकर अपने पिता संतानु के पास पहुंचे। और जब पिता ने देखा कि भीष्म देव ने, जो कि उनका बड़ा प्रिय बेटा था, ये वचन दिया है कि वो कभी विवाह नहीं करेंगे, इस भावना से कि सत्यवती का बेटा राजगद्दी में बैठे, तो पिता बड़े खुश हुए और महाराज संतानु ने भीष्म देव को वचन दिया कि तुम्हें ये वर मैं देता हूं कि तुम चुन सकते हो अपने मृत्यु के समय। तो देवव्रत का एक और नाम था भीष्म देव, उनके पिता संतानु ने वर दिया था क्या कि वो चुन सकते हैं उनके मृत्यु के समय। तो भीष्म देव को यह वर प्राप्त हुआ था पिता के द्वारा कि वो चुन सकते हैं उनके मृत्यु के समय, इसलिए कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति पर जब उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर महाराज राजगद्दी पर बैठ गए हैं, तो भीष्म देव ने निर्णय किया कि मुझे अभी मैं शरीर त्याग सकता हूं। कि वो शरीर त्याग रहे थे, भगवान स्वयं उनके आंखों के समक्ष थे और सारे प्रसिद्ध देवता देवी और पांडव भाई। और उस स्थिति में भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर, पूछो भीष्म देव से क्या होना चाहिए जीवन का लक्ष्य, हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। भगवान ये बताना चाहते थे, मेरा जो भक्त है, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो दर्द में हो, पर ही साउंड इन माइंड, उसका जो मन है बिल्कुल ठीक रहता है, उसका जो मन है बिल्कुल तेज रहता है। तो उस स्थिति में जब भीष्मदेव, जब कोई व्यक्ति शरीर त्याग रहा है, हम क्या बोलते, चुप चुप चुप, डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब मत करो। पर यहां भगवान ने युधिष्ठिर को कहा, पूछो इसे क्या होना चाहिए, हमारा कर्तव्य अलग अलग आश्रम। तो भीष्मदेव ने 9 मूल शिक्षा दी है जो कि हम सबको सुनना चाहिए ध्यान से और अपनाना चाहिए हमारे चरित्र में। अगर आप इन 9 नियमों का पालन करोगे तो बिना शंका के भक्ति में आप आगे बढ़ सकोगे। सुनना चाहते हो? मैं एक ही शर्त पर सुनाऊंगा, अगर आप इसको अपनाओगे। अगर आपने अपनाना नहीं है तो मैं सुनाना नहीं चाहता। अपनाओगे? यू प्रैक्टिस इट? ओके। क्योंकि पहला है नॉट टू बिकम एंग्री, क्रोध मत करो, क्रोध को कंट्रोल करो। अक्सर हम क्रोधित होते हैं कब, जब हमें कुछ मिले नहीं। हमें आदर चाहिए, सबको आदर चाहिए, वो आदर नहीं मिले तो क्रोधित हो जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति की सुविधा चाहिए, नहीं मिले तो हम क्रोधित हो जाते हैं। भगवान गीता में क्या कहते हैं, लस्ट एंगर एंड ग्रीड आर 3 हाईवेज लीडिंग टू हेल। तो क्रोध से बचो। पर अगर कोई भगवान की सेवा में रोक रहा है तो फिर अलग बात है। पर ये नहीं, आपको आदर नहीं दिया, आपका नाम से बस नहीं बुलाया तो आप क्रोधित हो जाओ, मेरा नाम ही पुकारा। हाँ, फिर नॉट टू लाई, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। कलयुग में तो झूठ बोले बगैर कोई रह नहीं सकता। भीष्म ने बोला झूठ मत बोलो, गलती करोगे तो बोल दो मैंने गलती की है। एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो भीष्मदेव ने कहा डोंट लाई, झूठ मत बोलो। तो पहला नियम क्या था, दूसरा क्या है, हाँ झूठ मत बोलो। टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ, अपनी जो संपत्ति है वो बराबर में बांटो। आज हम क्या देखते हैं, कईयों के पास तो इतनी संपत्ति है कि 100 पीढ़ी तक किसको नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, और कईयों के पास खाने के लिए नहीं है। कॉमनेस सिद्धांत अच्छा था। प्रभुपाद जी सोवियत यूनियन में गए थे 1971 में, जब रशिया में कॉम्युनिज्म था। कॉम्युनिज्म का सिद्धांत यह है संपत्ति बराबर में बांटो, पर बटती नहीं है, कईयों के पास ज्यादा होता है, कईयों के पास कम। तो प्रभुपाद जी ने कहा स्पिरिचुअल कॉम्युनिज्म, ईशा वाशाई दाम सर्वम यात किंचा जगत जगत। तो धन जो है अगर आप बराबर बांटोगे तो सबके पास होगा। लोग कहते हैं हिंदुस्तान गरीब देश है। गरीब देश इसलिए है क्योंकि 2% आबादी के पास 90% संपत्ति है, और जो बाकी 98% आबादी है उनके पास 10 या 20% संपत्ति है। पर अगर हम बराबर में बांटेंगे धन, हाँ, तो फिर सबकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। फिर चौथा, हाँ चौथा ध्यान से सुनो, चौथा नियम यह है टू फॉरगिव, क्षमा करना। क्षमा की भावना होनी चाहिए भक्त में। भक्त में यह भावना नहीं होनी चाहिए हम भी बदला लेंगे, नेले पे देला, तुमने तुमने मेरे साथ ये किया था, मैं ये करूंगा। तुमने 10 साल पहले मुझे ये सताया था, मैं अब इसका बदला लूंगा। वो भक्त का लक्षण नहीं है। भक्त का लक्षण है बिस्मिल्लाह क्या, टू फॉरगिव, क्षमा, माफ करो। अगर किसी ने कुछ आपको कष्ट दिया भी है, सह लो पर बदला मत लो। आप युधिष्ठिर महाराज का आचरण देखो, धृतराष्ट्र उनके बेटों ने हर प्रकार की योजना बनाई थी पांडव भाइयों का वध करने के लिए, पर जब युद्ध समाप्त हुआ कुरुक्षेत्र का, युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को क्या कहा? मुझे दुख है कि आपकी पूरी औलाद मर गई, आप ये लो ये बड़ा महल रहने के लिए, है कि नहीं? उन्हें तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा लो ये बड़ा मकान महल रहने के लिए। और धृतराष्ट्र इतना सुखी था उस महल में कि वो सोचने लगे मेरी राजसिक अभिलाषा अंत में पूरी हो गई। तो भक्त में क्षमा की भावना होनी चाहिए, टू फॉरगिव। हमारे मन में ये भाव नहीं होना चाहिए, उसने मेरे साथ ये किया तो मैं भी देख लूंगा। हमें ये सोचना चाहिए कि परम भगवान हर चीज के साक्षी हैं, है ना? भगवान साक्षी हैं, भगवान साक्षी है नहीं? तो फिर हम बदला लेने का क्यों सोचें? अगर आप गलत, कोई व्यक्ति गलत करेगा तो भगवान उसको भुगतना पड़ेगा उसका परिणाम। आप क्यों हर कार्य के पुलिसमैन बनते हो? भगवान का अपना कार्य करने लो। तो भक्तों में क्षमा की भावना होनी चाहिए। भक्तों में 26 गुण हैं, जिनमें एक गुण भक्त का क्या होना चाहिए? क्षमा की भावना। तो विष्णुदेव ने कहा टू फॉरगिव, क्षमा की भावना रखो, बदला लेने का मत सोचो। फिर आगे टू बिगेट चिल्ड्रेन ओनली बाय वन लेजिटिमेट वाइफ। अगर तुमने संतान पैदा करना है तो अपनी पत्नी द्वारा ही ग्रहण करो। तो आप कहोगे ये क्यों लिख रहे? भीष्मदेव को 5000 साल पहले पता था भविष्य में लोगों का यह भाव रहेगा, विवाह की क्या जरूरत, विवाह के बिना भी हम औलाद पैदा कर सकते हैं। जैसे आज के जमाने में बड़ा कॉमन है स्त्रियां विवाह नहीं करती हैं, जब भी संतान पैदा करती हैं। फिर टू बी प्योर इन माइंड एंड हाइजीनिक इन बॉडी, मन को शुद्ध बनाओ। मन शुद्ध कैसे बनेगा? मन शुद्ध बनेगा अगर मन के द्वारा भगवान का चिंतन करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान की सेवा का ध्यान करो, तो मन शुद्ध होगा। अगर मन में केवल भौतिक विचार रहेंगे तो मन अशुद्ध रहेगा। हाइजीनिक इन बॉडी, शरीर को साफ रखो। इसलिए हम स्नान करते हैं एक बार, दो बार, तीन बार। श्री भक्त को बिल्कुल साफ रहना चाहिए, गंदा नहीं। हमारे जो मंदिर हैं बिल्कुल साफ रहने चाहिए। जब प्रभुपाद किसी मंदिर में आते थे सबसे पहले देखते थे कितना सफा है, बिल्कुल साफ रहना चाहिए। भीष्मदेव ने कहा मन को शुद्ध बनाओ और शरीर को बिल्कुल साफ रखो। नॉट टू बी इनिमिकल टुवर्ड्स एनीवन, किसी के प्रति गलत भाव मत रखो। किसी के प्रति अगर किसी ने आपको कष्ट भी दिया है तो उसको सह लो। क्या सोचकर? मैंने इसके लिए, इसके प्रति अपराध किया होगा जिसका बदला इस व्यक्ति ने लिया, ये भाव होना चाहिए। तो भीष्मदेव कहते हैं डोंट बी इनिमिकल टुवर्ड्स एनीवन, किसी के प्रति मतभेद मत रखो। जब हम किसी वैष्णव के विषय में बुरा सोचते हैं, मतभेद सोचते हैं, तो इसमें नुकसान आपका ही है। आपका हृदय जलेगा, आपके हृदय में ज्यादा आग पैदा होगी, आप ये सोचे कि मुझे बदला लेना चाहिए, मुझे बदला लेना चाहिए, पर आपकी भक्ति नष्ट होगी। पर अगर आप ये सोच रहे हो भगवान हर चीज के साक्षी हैं, मैं क्यों ये अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाऊं, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको ही सजा भुगतना पड़े, क्योंकि नोबडी इज कर्मा फ्री, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो या छोटा हो। अगर हम गलत कार्य करेंगे, गलत भाव रखेंगे, तो उसका परिणाम हमें भी भुगतना पड़ेगा। तो इसके लिए भीष्म देव ने क्या कहा, डोंट बी इनिमिकल टूवर्ड एनीवन, किसी को किसी के प्रति मतभेद मत रखो, किसी के प्रति गलत भाव मत रखो, सबका सुख चाहो। भक्त जो है सबको सुखी देखना चाहता है, किसी को दुखी नहीं देखना चाहता। टू बी सिंपल, भीष्मदेव ने कहा टू बी सिंपल, हमारा सिद्धांत है सादा जीवन और ऊंचा विचार। और भौतिक जीवन क्या है, ऊंचा जीवन सादा विचार। तो भक्त जो है सादा जीवन बिताता है, सादे कपड़े, सादे ये नहीं चार चार सोने की मुंदरियां और बड़े चमकते हुए रेशम पहनना, हमें सादा कपड़ा पहनना चाहिए। जब सनातन गोस्वामी महाप्रभु को मिले थे वाराणसी में, तो सनातन गोस्वामी को रास्ते में उनके बनोई श्रीकांत ने महंगी चादर दी थी। जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा सनातन ने सब कुछ त्याग दिया है और ये महंगी चादर ओढ़ रहा है, तो महाप्रभु देख रहे थे, तो सनातन समझ गए महाप्रभु इसे खुश नहीं है, तो उन्होंने वो चादर बदल दी। तो भक्त को सादा जीवन में बिताना चाहिए। टू सपोर्ट सर्वेंट्स एंड सबॉर्डिनेट्स, जो हमारे सेवक हैं उनकी भी हमें देखभाल करनी चाहिए। ये नहीं कि हमारे जो सेवक हैं उनकी हम देखभाल नहीं करें, जो ये नहीं कि केवल हम अपनी देखभाल करें और सेवकों की नहीं। तो भीष्म देव ने ये नौ नियम आपको समझे, आप ये नौ, हाँ ये नौ नियम दिए थे युधिष्ठिर महाराज के द्वारा हम सबको। क्या है ये फिर से, ये बहुत महत्वपूर्ण है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्या था, क्रोध मत करो। तो आप क्रोध करोगे नहीं करोगे, आज भीष्मष्टमी में ये निर्णय करो हमने क्रोध नहीं करना। दूसरा क्या था, आह ये तो मुश्किल है, संभव होगा या नहीं होगा, नहीं आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, होगा, झूठ बोलना बंद करोगे पक्का, गलती करोगे तो भी स्वीकार करोगे, ओके। तीसरा, तीसरा क्या है, टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ। वेल्थ तो आप लोग के पास ज्यादा है नहीं, है ना, ये आप पैसा छुपा रहे हो बैंक में, पर आपके पास असली धन है। असली धन क्या है, हरि नाम, दिस इज रियल वेल्थ। तो सबको ये हरि नाम जाकर बांटो सड़कों में। चौथा क्या है, टू फॉरगिव, क्षमा करना। तो सब में क्षमा की भावना होनी चाहिए। तिनादपि सुनिचे न तरोर पीसा न मानी न मना देना कितने सदर। तो क्षमा की भावना, सहनशील होना, ये भी इसमें आता है। तो शास्त्रों 26 गुणों में एक गुण है क्षमा की भावना रखना। आप कहोगे कैसे मैं क्षमा करूं, उसने मुझे इतना कष्ट दिया, इतना दुख दिया, मुझे रुलाया, ये किया, ये हो किया। तो आप, आपको ये सोचना चाहिए आपके कर्मों के अनुसार आपको इसे हजार गुना और कष्ट भुगतना चाहिए था, भगवान की कृपा से इतनी थोड़ी मात्रा में भुगत रहे हो। तो क्षमा की भावना होनी चाहिए हम सब में। पांचवा क्या था, संतान उत्पन्न करना केवल पत्नी के द्वारा। अगला क्या था, मन को शुद्ध बनाना और शरीर को शुद्ध। और सातवां क्या था, किसी के प्रति मतभेद मत रखो, डोंट बी इनिमिकल टू एनीवन, जो आपको कष्ट दिया है तो भी उसके प्रति मतभेद मत रखो। आठवां सादा जीवन, और नौवां अपने सेवकों की देखभाल करना। तो ये नौ, हम भीष्म देव के जन्मदिन पर हमें ये नौ ये निर्णय करना चाहिए कि हमने ये नौ नियमों का क्या करना है, करोगे? ओके, हरे कृष्णा। ओके ठीक है, मुझे प्रश्न, एक ही प्रश्न, एक ही प्रश्न। हाँ
हरे कृष्ण, मंदिर के अंदर कोई भक्त के साथ मतभेद न रहेगा
क्या?
मंदिर के अंदर कोई भक्त के साथ मतभेद न रहेगा ठीक है, जो बाहर लोग आते आपको गाली गुलज करते, जो समझने वाले भी नहीं समझते,
बाहर तो कोई चोर है आपको गाली देता है,
हाँ
तो सह लो, कोई गाली दे रहा है तो आपके वापस गाली दोगे?
खाली नहीं, खाली गाली नहीं, वो आपको कोई थप्पड़ लगेगा, दो थप्पड़ लगेगा, फिर क्या करना पड़ेगा?
कोई थप्पड़ लगाएगा तो आप डिफेंड कर लेना, तो कोई गाली दे रहा तो सह लो, ये तो नहीं वो गाली देगा तो आप भी गाली दोगे।
ये तो अपराध लागू होगा कि नहीं है? लागू होगा
नहीं, पर गाली भी कर्मी लोग कहां देते हैं गाली, में मुझे तो अगर कोई गाली देता है तो गाली सह लो, अगर वो थप्पड़ मारने आता है फिर अपने आप को बचाओ।
ठीक है,
ठीक है, ओके, हरे कृष्णा।